जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ, ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग।
ओम श्री सतगुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मन के सब अर्थ रूपी तृणों को ज्ञान रूपी अग्नि लगावे और वैराग्य रूपी वायु से जगावे। जब इन तृणों को भस्म कर डालोगे तब तुम परम शांति को प्राप्त होंगे। मन के जलने से परम संपदा प्राप्त होती है, इससे भिन्न सब आपदा है। मन का उपशम करने में ही कल्याण है। ये जो भीतर बाहर नाना प्रकार के पदार्थ दिखते हैं वे मन के मोह से उत्पन्न हुए हैं। जब मन उपशम को प्राप्त होता है तब मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता, पृथ्वी आदि नाना प्रकार के प्राणी व सब आकाश रूप हो जाते हैं। यह सब ब्रह्म है। ज्ञानी को एक सत्ता भासित होती है क्योंकि दूसरा कुछ बना नहीं। ब्रह्म से जगत भासित होता है। उसमें जब नाना प्रकार की वासना होती है तब अपनी अपनी वासना के अनुसार जीव जगत को देखता है। इससे तुम जागो और वासना के पिंजड़े को तोड़कर आत्मपद को प्राप्त हो जाओ। हे रामचंद्र जी, अज्ञान से जो आत्मपद को भूलकर सोए और वासना के पिंजड़े में पड़े हैं, उन अज्ञानियों की तरह तुम न होना। अज्ञान से जीव का नाश होता है। जो कुछ जगत देखते हो वह ब्रह्मात्र है। जैसे बांसुरी में पवन का शब्द होता है वैसे ये प्राणवायु से बोलते दिखते हैं, ऐसा जानो। यह संपूर्ण जगत ब्रह्म मात्र ही है। हे रामचंद्र जी, यदि पुरुष अपने कल्प में जागेगा तो यह जागृत उसको स्वप्न भासित होगा, और जो वह न जागेगा तो उस कल्प का प्रलय हो जाएगा, तो यह जीव वही चेष्टा करेगा। यदि ज्ञान की प्राप्ति हो तो उस शरीर और इस शरीर की वासना इकट्ठी होकर निर्वाण हो जाएगी, और जो ज्ञान न प्राप्त हो तो उस शरीर का त्याग कर और जागृत ब्रह्म भासित होगा। श्री योग वशिष्ठ महारामायण मुमुक्षु प्रकरण सर्ग 13। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह संसार बड़ा आपदा का समुद्र है। इसमें जो कोई श्रेष्ठ पुरुष है वह सत्संग और सत्शास्त्र के विचार से इस समुद्र को उल्लंघ जाता है, और परमानंद निर्भय पद को जो आदि अंत और मध्य से रहित है प्राप्त होता है। और जो संसार समुद्र के सम्मुख हुआ है वह दुख से दुख को प्राप्त होता है और कष्ट से कष्टतर नरक को प्राप्त होता है। जैसे विष को विष जान उसका पान करता है और वह विष उसको नाश करता है, वैसे ही जो पुरुष संसार को असत्य जानकर फिर संसार की ओर यत्न करता है सो मृत्यु को प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष आत्मपद से विमुख है पर उसे कल्याण रूप जानता है और उसके अभ्यास का त्याग कर संसार की ओर धावता है, वह वैसे ही नष्ट होगा और जन्म मरण को पावेगा जैसे किसी के घर में अग्नि लगे। वह तृण के घर और तृण ही के शैया में शयन करे तो वह नष्ट होगा। जो संसार के पदार्थों में सुख मानते हैं वे सुख बिजली की चमक से है, जो होके मिट जाते हैं स्थिर नहीं रहते। संसार का दुख आगम पाई है। हे रामचंद्र जी, यह संसार अविचार से भासता है और विचार करने से लीन हो जाता है। यदि विचार करने से लीन न होता तो तुमको उपदेश करने का काम नहीं था। इसी कारण पुरुषार्थ चाहिए। जैसे हाथ में दीपक हो और अंधा होकर कूप में गिरे सो मूर्खता है, वैसे ही संसार भ्रम के निवारने वाले गुरु और शास्त्र विद्यमान है, जो उनकी शरण न आवे वह मूर्ख है। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष ने संत की संगति और सत्शास्त्र के विचार द्वारा आत्मपद को पाया है सो पुरुष केवल कैवल्य भाव को प्राप्त हुआ है, अर्थात शुद्ध चैतन्य को प्राप्त हुआ है और संसार भ्रम उसका निवृत्त हो गया है। हे रामचंद्र जी, यह संसार मन के संसरने से उपजा है। जीव का कल्याण बांधव धन प्रजा तीर्थ देव द्वारा और ऐश्वर्य से नहीं होता, केवल एक मन के जीतने से कल्याण होता है। हे रामचंद्र जी, जिसको ज्ञान परमपद रसायन कहते हैं, जिसके पाने से जीव का नाश न हो और जिसमें सर्व सुख की पूर्णता हो, इसका साधन समता और संतोष है। इनसे ज्ञान उत्पन्न होता है। आत्मज्ञान रूपी एक वृक्ष है सो उसका फूल शांति है और स्थिति फल है। जिस पुरुष को यह ज्ञान प्राप्त हुआ है शांतिमान होकर वह निर्लेप रहता है। उसको संसार का भाव अभाव रूप स्पर्श नहीं होता। जैसे आकाश में सूर्य उदय होने से जगत की क्रिया होती है और जब वह दृश्य अदृश्य होता है तब जगत की क्रिया भी लीन हो जाती है, और जैसे उस क्रिया के होने और न होने में आकाश ज्यों का त्यों है, वैसे ही ज्ञानवान सदा निर्लेप है। उस आत्मज्ञान की उत्पत्ति का उपाय यह मेरा शास्त्र है। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष इस मोक्ष उपायक शास्त्र को श्रद्धा संयुक्त पढ़े अथवा सुने तो उसी दिन से वह मोक्ष का भागी हो। मोक्ष के चार द्वारपाल हैं, सो मैं तुमसे कहता हूं, जब इनमें से एक भी अपने वश हो तब मोक्ष द्वार में शीघ्र ही प्रवेश होगा। उन चारों के नाम सुनिए। हे रामचंद्र जी, शम जीव के परम विश्राम का कारण है। यह संसार जो दिखता है सो मरुस्थल की नदीवत है। इसको देखकर मूर्ख अज्ञानी सुखरूप जल जानकर मृग के समान तोड़ता है, शांति को नहीं प्राप्त होता। जब शम रूपी मेघ की वर्षा हो तब सुखी हो। हे रामचंद्र जी, शम ही परमानंद परम पद और शिव पद है। जिस पुरुष ने शम पाया है सो संसार समुद्र से पार हुआ है, उसके शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। हे रामचंद्र जी, जैसे चंद्र उदय होता है तब अमृत की कणा फूटती है और शीतलता होती है। वैसे जिसके हृदय में शम रूपी चंद्रमा उदय होता है उसके सब ताप मिट जाते हैं और परम शांतिमान होता है। हे रामचंद्र जी, शम देवता के अमृत समान कोई अमृत नहीं। शम से परम शोभा की प्राप्ति होती है। जैसे पूर्णमासिका के चंद्रमा की कांति परम उज्जवल होती है, वैसे ही शम को पाके जीव की उज्जवल कांति होती है। जैसे विष्णु के दो हृदय है, एक तो अपने शरीर में और दूसरा संतों में है, वैसे ही जीव के भी दो हृदय है, एक अपने शरीर में और दूसरा शम में। जैसा आनंद शमवान को होता है वैसा अमृत पीने से भी नहीं होता। हे रामचंद्र जी, कोई प्राण से प्रिय अंतर्धान होकर फिर प्राप्त हो तो जैसा आनंद होता है उस आनंद से भी अधिक आनंद शमवान को होता है। उसके दर्शन से जैसा आनंद होता है ऐसा आनंद राजा, मंत्री और सुंदर स्त्री को भी नहीं है। हे राम जी, जिस पुरुष को शम की प्राप्ति हुई है वह वंदना करने और पूजने योग्य है। जिसको शम की प्राप्ति हुई है उसको उद्वेग नहीं होता और अन्य लोगों से उद्वेग नहीं पाता। उसकी क्रिया और वचन अमृत की नाई मीठे और चंद्रमा की किरण के समान शीतल और सबको हृदय राम है। हे रामचंद्र जी, जैसे बालक माता को पाके आनंदित होता है वैसे ही जिसको शम की प्राप्ति हुई है उसके संग से जीव अधिक आनंदवान होता है। जैसे किसी का बांधव मुवा हुआ फिर आवे और उसको आनंद प्राप्त हो उससे भी अधिक आनंद शम संपन्न पुरुष को होता है। हे रामचंद्र जी, ऐसा आनंद चक्रवर्ती और त्रिलोकी का राज्य पाने से भी नहीं होता। जिसको शम की प्राप्ति हुई है उसके शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। उसको सर्प और सिंह का भय नहीं रहता बल्कि किसी का भी भय नहीं रहता। वह सदा निर्भय शांत रूप रहता है। हे रामचंद्र जी, जो कोई कष्ट प्राप्त हो और काल की अग्नि भी आ लगे तो भी वह चलायमान नहीं होता, सदा शांत रूप रहता है। जैसे शीतल चांदनी चंद्रमा में स्थिर है वैसे ही जो कुछ गुण और संपदा है सब शमवान के हृदय में आस्थित होती है। हे राम जी, जो पुरुष आध्यात्मिक आदिक ताप से जलता है उसके हृदय में कदाचित शम की प्राप्ति हो तो सब ताप मिट जाते हैं। जैसे तप्त पृथ्वी वर्षा से शीतल हो जाती है वैसे ही उसका हृदय शीतल हो जाता है। जिसको शम की प्राप्ति हुई है सो सब क्रिया में आनंद रूप है, उसको कोई दुख नहीं स्पर्श करता। जैसे वज्र और शिला को बाण नहीं भेद सकता वैसे ही जिस पुरुष ने शम रूपी कवच पहना है उसको आध्यात्मिक आदिक ताप भेद नहीं सकते, वह सर्वदा शीतल रूप रहता है। हे रामचंद्र जी, तपस्वी पंडित याज्ञिक और धनाढ्य पूजा में मान करने योग्य है, परंतु जिसको शम की प्राप्ति हुई है सो सबसे उत्तम और सबके पूजने योग्य है। उसके मन की वृत्ति आत्म तत्व को ग्रहण करती है और सब क्रियाओं में सो होती है। जिस पुरुष को शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध क्रिया के विषयों के इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष नहीं होता, उसको शांतात्मा कहते हैं। हे रामचंद्र जी, जो संसार के रमणीय पदार्थ में बंधेमान नहीं होता और आत्मानंद से पूर्ण है, उसको शांतिमान कहते हैं। उसको संसार के शुभ अशुभ का मिलनपना नहीं लगता, वह तो सदा निर्लेप रहता है। जैसे आकाश सब पदार्थों से निर्लेप है, वैसे ही शांतिमान सदा निर्लेप रहता है। हे रामचंद्र जी, ऐसा पुरुष इष्ट विषय की प्राप्ति में हर्षवान नहीं होता और अनिष्ट की प्राप्ति में शोकवान नहीं होता। वह अंतःकरण से सदा शीतल रहता है और उसको कोई दुख स्पर्श नहीं करता। वह अपने आप में सदा परमानंद रूप रहता है। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही शांति के पाने से सब दुख नष्ट होकर सदा निर्विकार रहता है। हे राम जी, वह पुरुष सब चेष्टा करते दृष्टि आता है, परंतु सदा निर्गुण रूप है। कोई क्रिया उसको स्पर्श नहीं करती। जैसे जल में कमल निर्लेप रहता है, वैसे ही शांतिमान सदा निर्लेप रहता है। हे राम जी, जो पुरुष बड़ी राज्य संपदा और बड़ी आपदा को पाकर ज्यों का त्यों अलग रहता है, उसे शांतिमान कहिए। हे राम जी, जो पुरुष शांति से रहित है, उसका चित्त क्षण क्षण राग द्वेष से तपता है, और जिसको शांति की प्राप्ति हुई है, सो भीतर बाहर शीतल और सदा एक रस है। जैसे हिमालय सदा शीतल रहता है, वैसे ही वह सदा शीतल रहता है। उसके मुख की कांति बहुत सुंदर हो जाती है। जैसे निष्कलंक चंद्रमा है, वैसे ही शांतिमान निष्कलंक रहता है। हे रामचंद्र जी, जिसको शांति प्राप्त हुई है, सो परम आनंदित हुआ है और उसी को परम लाभ प्राप्त होता है। ज्ञानी इसी को परम पद कहते हैं। जिसको पुरुषार्थ करना है, उसको शांति की प्राप्ति करनी चाहिए। हे रामचंद्र जी, जैसे मैंने कहा है, उस क्रम से शांति का ग्रहण करो, तब संसार समुद्र के पार पहुंचोगे। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अब विचार का निरूपण सुनिए। जब हृदय शुद्ध होता है, तब विचार होता है और शास्त्रार्थ के विचार द्वारा बुद्धि तीक्ष्ण होती है। हे रामचंद्र जी, अज्ञान वन में आपदा रूपी बेली की उत्पत्ति होती है, उसको विचार रूपी खड़ंग से जब काटोगे, तब शांत आत्मा होंगे। मोह रूपी हस्ती जीव के हृदय कमल का खंड खंड कर डालता है। अभिप्राय यह है कि इष्ट अनिष्ट पदार्थ में राग द्वेष से छेदा जाता है। जब विचार रूपी सिंह प्रकटे, तब मोह रूपी हस्ती का नाश कर शांतात्मा होंगे। हे रामचंद्र जी, जिसको कुछ सिद्धता प्राप्त हुई है, उसे विचार और पुरुषार्थ से ही हुई है। जब प्रथम राजा विचार कर पुरुषार्थ करता है, तब उसे से राज्य को प्राप्त होता है। प्रथम बल, दूसरे बुद्धि, तीसरे तेज, चतुर्थ पदार्थ आगमन और पंचम पदार्थ की प्राप्ति, इन पांचों की प्राप्ति विचार से होती है। अर्थात इंद्रियों का जीतना, बुद्धि आत्मव्यापिनी और तेज पदार्थ का आगमन, इनकी प्राप्ति विचार से होती है। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष ने विचार का आश्रय लिया है वह विचार की दृढ़ता से जिसकी वांछा करता है उसको पाता है। इससे विचार इसका परम मित्र है। विचारवान पुरुष आपदा में नहीं फंसता। जैसे तुम भी जल में नहीं डूबती, वैसे ही वह आपदा में नहीं डूबता। हे रामचंद्र जी, वह जो कुछ करता है विचार संयुक्त करता है और विचार संयुक्त ही देता लेता है। उसकी सब क्रिया सिद्धता का कारण होती है और धर्म अर्थ काम मोक्ष विचार की दृढ़ता से ही सिद्ध होते हैं। विचार रूपी कल्प वृक्ष में जिसका अभ्यास होता है सोई पदार्थों की सिद्धि को पाता है। हे रामचंद्र जी, शुद्ध ब्रह्म का विचार ग्रहण करके आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाओ। जैसे दीपक से पदार्थ का ज्ञान होता है, वैसे ही पुरुष विचार से सत्य असत्य को जानता है। जो असत्य को त्याग कर सत्य की ओर यत्न करता है उसी को विचारवान कहते हैं। हे राम जी, संसार रूपी समुद्र में आपदा की तरंगें उठती हैं। विचारवान पुरुष उनके भाव अभाव में कष्टवान नहीं होता। जो कुछ क्रिया विचार संयुक्त होती है उसका परिणाम सुख है और जो विचार बिना चेष्टा होती है उससे दुख प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, अविचार रूप कंटक के वृक्ष से दुख के बड़े कंटक उत्पन्न होते हैं। अविचार रूपी रात्रि में तृष्णा रूपी पिशाचिनी विचरती है और जब विचार रूपी सूर्य उदय होता है तब अविचार रूपी रात्रि और तृष्णा रूपी पिशाचिनी नष्ट हो जाती है। हे राम जी, हमारा यही आशीर्वाद है कि तुम्हारे हृदय से अविचार रूपी रात्रि नष्ट हो जाए, विचार रूपी सूर्य से अविचारित संसार दुख का नाश होता है। जैसे बालक अविचार से अपनी परछाई को वैताल कल्प के भय पाता है और विचार करने से भय नष्ट हो जाता है, वैसे ही अविचार से संसार दुख देता है और सत्शास्त्र द्वारा युक्ति कर विचार करने से संसार भय नष्ट हो जाता है। हे रामचंद्र जी, जहां विचार है वहां दुख नहीं है। जैसे जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं होता और जहां प्रकाश नहीं वहां अंधकार रहता है, वैसे ही जहां विचार है वहां संसार भय नहीं है और जहां विचार नहीं वहां संसार भय रहता है। जहां आत्मविचार उत्पन्न होता है वहां सुख देने वाले शुभ गुण स्थित होते हैं। जैसे मणि सरोवर में कमल की उत्पत्ति होती है, वैसे विचार में शुभ गुणों की उत्पत्ति होती है। जहां विचार नहीं है वहां ही दुख का आगमन होता है। हे राघव, जो कुछ अविचार से क्रिया करते हैं सो दुख का कारण होती है। जैसे चूहा बिल को खोद के मृतिका निकालता है, वह जहां इकट्ठी होती है वहां बेली की उत्पत्ति होती है, वैसे ही अविचार से जो मृतिका रूपी पाप क्रिया को इकट्ठी करता है उससे आपदा रूपी बेली उत्पन्न होती है। अविचार रूपी घुन के खाए सूखे वृक्ष से सुख रूपी फल नहीं निकलते। अविचार उसका नाम है जिसमें शुभ और शास्त्र अनुसार क्रिया न हो। हे राम जी, विवेक रूपी राजा है और विचार रूपी उसकी ध्वजा है। जहां विवेक रूपी राजा आता है वह विचार रूपी ध्वजा भी उसके साथ फिरती है, और जहां विचार रूपी ध्वजा आती है वह विवेक रूपी राजा भी आता है। जो पुरुष विचार से संपन्न है सो पूजने योग्य है। जैसे द्वितीया के चंद्रमा को सब नमस्कार करते हैं, वैसे ही विचारवान को सब नमस्कार करते हैं। हे राम जी, हमारे देखते देखते अल्प बुद्धि भी विचार की दृढ़ता से मोक्ष पद को प्राप्त हुए हैं। इससे विचार सबका परम मित्र है। हरि ओम, हरि ओम, ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।